वृंदावन के घर घर में पूजा होती है। अपने घरों में पूजा करते हैं, जल्दी से जाकर के बैठिए, हटिए, जल्दी करो भगवान, जाओ ये सुनो। वृंदावन के घर घर में पूजा होती है। वृंदावन के तीन तरफ में यमुना जी अठेलियाँ करती हैं, मानो वृंदावन से निकलना नहीं चाहती, इधर से इधर से उधर से घूम फिर कर चारों से टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई, बड़ी मुश्किल से जब निकलती हैं तो बड़ी मुश्किल से निकलती हैं। वहाँ के लोग घर घरों में पूजा करते तो हैं, ये बात ठीक है। कहाँ जा रहे हैं भाई? बैठिए, ये सुर्सी एक मिनट के लिए मत जाओ। वृंदावन में घरों घरों में पूजा होती है, किंतु जहाँ सवेरे हुआ गोविंद जी के दर्शन के लिए लाखों लाखों लोग चल पड़ते हैं। और जब आरती होती है तो महिलाएं पुरुष सब नृत्य करने लगते हैं। अभी वो गोविंद जी, मूल गोविंद जी अब जयपुर में हैं, जयपुर में लाखों लोग सवेरे एकदम भोर में 4 बजे निकल आते हैं। इस समय गोविंद जी का मंदिर वहाँ सुना है, किंतु उसके पास में फिर नया बना है, किंतु वो रंग नहीं है जो कि जयपुर में अभी जहाँ पर विराजमान है। राजा रानी भी मल छोड़ करके आ जाते हैं। घर घर के में स्त्रियाँ पुरुष उनको कोई अंकुश नहीं, वहाँ पर नित्य करते हैं सभी लोग। घर में पूजा होती है इसलिए नहीं जाएंगे ऐसा नहीं, घर घर में पूजा करती हैं और वहाँ पर सभी लोग जाते हैं गोविंद जी के दर्शनों के। वहाँ पर गोविंद जी का अद्भुत मांग मांग करके सेवा ग्रहण करते हैं जो गोविंद जी वहाँ पर बंसी बट पर रास नृत्य इत्यादि करते हैं और वहाँ पर सबका अपनी आँखों से सबको कृतार्थ कर देते हैं। ऐसे गोविंद जी की जो सेवा न करे वृंदावन में रह करके या वृंदावन के बाहर में, मीरा जी कहती है उनका जीवन फीका। फीका माने क्या? जैसे प्राण नहीं है, कोई मर गई लड़की और उसको सिंदूर लगा दो, सोने के गहने से उसे भर दो, रेशमी वस्त्र पहना दो, तो उसका क्या मूल्य है? कुछ भी मूल्य नहीं। प्राणी नहीं रहा तो फिर और मूल्य क्या रहा? सब्जियां बहुत बनाई हैं तरह तरह की, लेकिन तो नमक नहीं तो वो कैसी रहेगी? ठीक ही रहेगी। ऐसे ही मनुष्य जीवन लाभ करके आज जिन लोगों ने भजन नहीं किया, विशेष करके राधा कृष्ण का, उनका जीवन फीका बेकार प्राण रहित मरे हुए व्यक्ति के समान है। इसलिए मनुष्य जन्म लाभ करके प्रत्येक मनुष्य का 5 वर्ष से उम्र लेकर के 80 वर्ष तक के लोगों के लिए, जब तक की होश है, इसके बाद भी 100 वर्ष में भी यदि शरीर ठीक चलता है तो तब तक जरूर भगवान का भजन करना चाहिए। चाहे वह लड़का हो, लड़की हो, विधवा हो, सधवा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जीवन निर्वाह के लिए करे काम, वाणिज्य व्यवसाय न करे। किंतु जैसे मधु मक्खियाँ अपना जो मधु बनाती हैं उसको चींटी चाटने के लिए जाती है और ऐसे लिपट जाती है कि वो मधु में से लाख चेष्टा करने पर भी निकल नहीं पाती है और उसी में प्राणों को गवा करके फिर मधु जैसे बन जाती है, उसका अस्तित्व नहीं होता। ऐसे हम संसार में आए हैं, भगवान का भजन यदि नहीं किया, उपदेशामृत हो या चैतन्य चरितामृत ले, बोलना लेने हार पहना दो तो चुपचाप जा करके बैठो। तो क्या बोल रहा था भूल गया। ऐसे नहीं, पर एक आदमी ने, मधुमक्खियों ने सारा वर्ष लगाकर एक एक फूल से मधु चुना, चयन किया और इतना बड़ा छत्ता लगाया, एक नहीं लाखों लाखों मधुमक्खी मिल करके जब छत्ता पूरा हो गया, मधु से भर गया, कोई बंदर आया चंचल, उसे पकड़ करके बैठा, मधु के साथ साथ में मक्खियों को भी खा गया। और हमारे आपके जैसे कुछ लोग बदमाश लोग पहुंच गए, धुआं इत्यादि दे करके या मंत्र से उनको ऐसे बांध दिया कि वो काटे नहीं, और सब कुछ छत्ते को तोड़ करके कपड़े में लेकर के और ऐसे ऐंठ करके मधुमक्खियों का रस भी मधु में मिल करके मीठा बन गया और उसको बेचा, मधुमक्खियां भी मारी गई। इसी तरह से जो लोग संसार रूपी ये आसक्ति की जो मधु है इसमें यदि लगे, तो काल आएगा एक दिन और मधु समेत आपको भी समाप्त कर देगा, भोगने के लिए नहीं छोड़ेगा। ये आप लोग इस मधु को स्त्री पुत्र परिवार पति भाई बंधु कुछ भी नहीं। इसलिए जब तक होश है तभी तक जो कुछ करते हो जीवन निर्वाह के लिए करो, ठीक है, किंतु ये मत समझो जीवन निर्वाह करने वाला मैं हूं, मैं मत लगाओ। यदि मैं भी लगाना हो तो ये लगाओ कि मैं प्रभु का दास हूं, भगवान का दास हूं, ऐसा भाव रखो। और यदि तुमने ये लगाया ये मैं हूं तो काल पीस देगा, भगवान नहीं, उन्होंने ही काल को बनाया है। ये काल कौन है? अपना कर्म। एक समय पांडव लोग कृष्ण के साथ में भीष्म पितामह के पास में पहुंचे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, करोड़ों करोड़ों स्त्रियां विधवा हो चुकी थी, सभी बड़े बड़े वीर मारे गए थे, इसलिए सभी लोग विधवा हो गए, सभी लोग रो रहे हैं। धृतराष्ट्र रो रहा, गंधारी रो रही, उसके 100 लड़के मारे गए, युधिष्ठिर भी रो रहे हैं, उनके भाई लोग भी रो रहे, अभिमन्यु इत्यादि मारे गए हैं उस युद्ध में, कोई बचा नहीं। 5 पांडव कृष्ण इधर में बचे और उधर में वैसे ही उस वंश का कोई नहीं बचा। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं जैसे ये मैंने क्या किया, कृष्ण के कहने से युद्ध किया और हमारे जितने आत्मीय स्वजन भाई बंधु सभी मारे गए, उस रक्त से मिले हुए इस राज्य को लेकर के मैं क्या करूंगा, मैं राज्य नहीं लूंगा, मैं छोड़ करके हिमालय पर्वत में चला जाऊंगा और इस राज्य से हमारा कोई। कृष्ण ने कहा ठीक है, तुम हिमालय में जाएगा मैं जानता हूँ, ठीक है, किंतु मेरे साथ में आओ। भीष्म पितामह जी युद्ध में घायल हो गए थे और इच्छा मृत्यु थी, बिना इच्छा के मरेंगे नहीं, इसलिए वो अभी तक वहाँ पर युद्ध क्षेत्र में है, चलो हम उनके पास में चलते हैं। तो वहाँ ये लोग गए, भीष्म पितामह ने कहा जी भैया हमको सज्जा दे दो। सज्जा मैंने क्या? बिछौना, पलंग और उस पर बिछाया हुआ ये सज्जा चाहिए। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, वो घर में गया, राजमहल से लाने लगा। दुर्योधन अभी उस समय तक बचा था, वो तो अंतिम दिन में मारा गया, तो वो जा करके सुंदर बिछौने तकिए ये सब ले आए। तो जैसे अर्जुन को बुलाओ, तुमसे ये संभव नहीं है। अर्जुन ने आते ही बाणों की सरसैया तैयार कर ली और उस पर उनको सुला दिया। कहे अब ठीक है, कहे एक तकिया मेरे लिए चाहिए। दुर्योधन तकिया लाने के लिए गया, तुमसे नहीं होगा, इनको बुलाया। तो इन्होंने क्या किया, दो ऐसे बाण मारे जो ऐसे हो गया, उसी पर इसको टिका दिया, खुश हो गए। कृष्ण ने कहा जी ये लोग बड़े अनुतप्त हैं, बड़े विरह में काकुर हैं, इनके सगे संबंधी भाई बंधु सब मारे गए हैं, सूर्य मैं ही इसका कारण हूँ, मैं कारण हूँ, मैंने मारा, राज्य के लिए हमने मारा, मैंने इनको समझाया ये समझे नहीं, इसलिए आपके पास में लाया हूँ, आप इनको उपदेश दीजिए। जब उपदेश को बोलना आरंभ कर रहे थे भीष्म पितामह जी, तो द्रौपदी इन लोगों के साथ में गई थी। द्रौपदी अंचल में मुख ढककर थोड़ी सी मुस्कुराई, थी तो वो भी दुखी, उसके पांचों लड़के और अभिमन्यु सब मारे गए थे, किंतु तो भी ऐसा नहीं ये सब लोगों के सामने हो करके हो उठी। आजकल के जैसे लड़कियां भी करती हैं, आजकल के उदंड लड़के भी ऐसा करते हैं, वहां पर उसके माता पिता गुरुजन बैठे रहेंगे और कोई भी परवाह नहीं। तो वैसे नहीं, अंचल की ओर से उनकी तरफ में देखा और कुछ मुस्कुराई। कहा जी बेटी तुम किस लिए मुस्कुराई, हंसी किस लिए, लज्जा करने की बात नहीं, तुम स्पष्ट करके बतलाओ। तो उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ में उनको प्रणाम करते हुए बोली, पितामह जी आज जो आप ज्ञान बड़े जोर से बघारने जा रहे हैं, ज्ञान बघारना जानते हो, ज्ञान बघारना उपदेश देने जा रहे हैं, इस ज्ञान की सामने आइए ना बैठिए, आप सामने आने से आप लोगों को देख करके कुछ जहाँ भी बैठिए आराम से बैठिए, ठीक है आराम है तो बैठिए। तो
प्रणाम नम्रता से
उन्होंने प्रणाम करके पूछा, पितामह जी दादाजी जिस समय कौरव लोग अन्यायपूर्वक रजस्वलावस्था में हमारा केस पकड़ करके घसीट करके ले आ रहे थे, आप उस दिन कहाँ थे, आप तो वहीं पर थे। जिस समय हमें रजस्वलावस्था में दुशासन 10,000 हाथियों का बल लेकर और हमारे सिर को हरण कर रहा था, नंगी करके दुर्योधन के जंग पर बैठाएगा, उसमें आपका ये ज्ञान जो है कहाँ था, उस समय तो आप कुछ बोले नहीं, सिर नीचा कर दिया। अजय बेटी ठीक कहती है, उस समय दुर्योधन का दुष्ट का अन्न खा करके हमारा बुद्धि मंडलीन हो गया था, नष्ट हो गया था बुद्धि, ज्ञान सब लुप्त हो गया था, इसलिए दुष्टों का अन्न नहीं खाना चाहिए। विषयी लोग जो हैं जो संसार में फंसे हुए भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोगों के अन्न 1,000 देने पर भी नहीं लो, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जो भगवान का विरोधी है, वैष्णव का विरोधी है, उनका कभी भी दिया हुआ पानी भी मत लो। यहाँ तक कि गुरु भी हो, भगवान और वैष्णव का और हरि कथा का विरोध करता है तो ऐसे गुरु को एक क्षण में उसे छोड़ दो, नहीं तो भक्ति नहीं हो। हमने भक्ति के लिए जीवन समर्पित किया है, हमने किसी लोभ लालच से संसारी के लिए नहीं लिए हमने किया है। तो वही महाराज कह रहे हैं भीष्म पितामह, उसमें मैं दुष्ट का अन्न खाया था और दुष्ट के अन्न खाने से हमारा ज्ञान सब चला गया, चौपट हो गया, इसलिए मैं सुन करके भी देख करके अन्याय का विरोध नहीं कर सका। तो विषय का अन्न खाने से हम सत्य का असत्य का विरोध नहीं कर सकते, ये तो सहज ही देखा जा सकता है। सत्य बोल भी नहीं सकेगा, जानेगा ऐसे ये बदमाशी काम हो रहा है तभी उसका अन्न खाया है ना, इसलिए साहस नहीं होगा कहने के। किंतु आज बहुत दिन हो गए हैं, मैंने उपवास कर रखा है, उपवास करने से हमारा रक्त तक भी सूख गया और उस रक्त से जो बुद्धि बनती है वो भी बुद्धि भी दुर्बुद्धि थी वो भी लुप्त हो गई, दुर्बुद्धि भी लुप्त हो गई, अब मेरा चित्त और हृदय शुद्ध हो गया है, ज्ञान भी हमारा लौट आया है। इसलिए आज बेटी जो तथ्य है, जो सत्य है मैं बतला रहा हूँ। पांडव लोग समझ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज समझ रहे हैं कि हम लोगों ने मारा इनको, किंतु इन लोगों ने किसी ने भी नहीं मारा, जो जो मरे हैं उनके कर्म उनको मारे। विशेष करके कृष्ण की ऐसी इच्छा थी, जो राजा लोग जो बड़े दुष्ट हैं, पूर्व जन्म में असुर थे, असुर माने जो भगवान का भजन नहीं करता है वो असुर है, और भगवान का जो भजन करता है वो देवता और भक्त है, शास्त्रों में ऐसा ही कहा गया है, भगवान का भक्त ही देवता या वैष्णव है, आज जो लोग भगवान का भजन नहीं करते वो दुष्ट असुर आतताई इत्यादि हैं। तो ये लोग क्षत्रिय लोग राजा बन करके और क्षत्रिय बन करके धर्म का विनाश कर रहे थे, इसलिए कृष्ण की इच्छा थी कि इन दुष्टों का दमन हो। धर्म संस्थापनार्थाय श्रम भवान जुग जुग में फिरता हूँ, इसलिए इनके द्वारा भगवान करा रहे थे और उनके कर्म करा रहे थे वो। अब देखो तुमको एक समझा रहा हूँ, पर वो कह रहे हैं भीष्म पितामह सरल सहज रूप में तुमको मैं समझाता हूँ। एक बुढ़िया थी, अभी जो बातें कर रहा मैं शांति पर्व से कह रहा हूँ महाभारत के। एक बुढ़िया थी, एकलौता बेटा था, बेटा 12 वर्ष का हुआ, बड़ा सुंदर आज्ञाकारी लड़का, बुढ़ियों को और दूसरा कुछ नहीं था, किसी प्रकार से जीवन का निर्वाह करती थी, दूसरों के घरों में जाता पीस लेती, कोई काम कर देती और उससे जो कुछ होता अपना जीवन निर्वाह करती। और फल फूल जहाँ से मिल जाता उसे भी जीवन निर्वाह कर लेती। सवेरे वो फूल लाती और यदि कभी किसी काम में व्यस्त हो जाती तो अपने बेटे को कहती, बेटा उस बगीचे से फूल ले आओ। एक दिन खूब सवेरे तड़के, जबकि अभी प्रकाश पूर्ण रूप से अभी नहीं सूर्य का आया था, कुछ कुछ अंधेरा था, उसने कहा, जब बेटा जरा उस बगीचे से फूल ले आना। तो वो फूल लाने गया और इतने में एक बहेलिया, बहेलिया जानते हैं, बहेलिया उसको कहते हैं जो जंगल में पशु पक्षी को पकड़ता है वही खाता है, नीच जाति के होते हैं, उनका काम ही यही सब होता है, दूसरे दूसरे पशु पक्षियों को बहला कर उन्हें पकड़ लेना, उनका मांस खाना, उनको निष्ठुरता से मारना, ये बहेलिया। एक बहेलिया जा रहा था, उसने देखा जी जहाँ वो फूल तोड़ रहा था तो वो एक काला सर्प कहीं से निकला, कृष्ण सर्प, और बिना कारण ही जाकर के उसे फस मारा उसे, और उसे काटने के साथ ही एक सेकंड के अंदर में उसका सारा शरीर काला पड़ और वहीं का वहीं ढेर हो गया, मर गया। बैलिया ने देखा जैसे इसको तो सांप ने काट लिया बिना कारण के ही, बस किसी प्रकार से मंत्र से पूछ कर और उसका ये पकड़ लिया गर्दन और पकड़ करके एक घड़ा था पास ही में, उस घड़े में उसको डाल दिया, उसका मुख बंद कर दिया, एक हाथ में उसके बच्चे को उठा लिया, दूसरे हाथ से उस सर्प को ले लिया और उसकी मैया के पास में गया। जाकर के जही निकट में पहुंचा, मैया ने देखा, अरे ये हमारा बेटा काला हो गया है, ये मर गया, बस हाय हाय करती वो गिर पड़ी। बहुत देर तक रोई, रोने पर जब कुछ वेग शांत हुआ तो बहेलिए ने कहा, मैया कहो ये सांप बड़ा दुष्ट जाति का, तुम्हारा बेटा फूल तोड़ रहा था, इसने जिन्हें कहाँ से निकला और उसको काट दिया बिना कारण के, तुम आदेश दो मैं इसको अभी मार दे, मार करके जला दूंगा, सांप को मारना नहीं चाहिए किंतु यदि मारा भी तो उसको जला दो, नहीं तो उसके आंखों में आपकी तस्वीर निकल आएगी और जहां से होगा उसका दूसरी जो पत्नी या कुछ लोग होंगे वो जरूर काटेंगे, बदला लेने में बड़े तेज होते हैं, चाहे आप 50 मील में हो 1000 मील में हो जरूर काटेंगे, ऐसा देखा जाता भारतवर्ष में, तो ऐसे बहुत देखे जाते। तो आप कहिए तो इसे बोटी बोटी काट दूं और काट करके इसे जला दूं। दो चार बार कहने पर मैया ने रोते रोते कहा, जी बेटा क्यों इसके इसको मारेगा और क्यों जलाएगा, जरूरत क्या है, हमारा बेटा आ जाएगा इसके मारने से, तो नहीं तो बेटा तो नहीं आएगा तो फिर क्यों मारेगा, समझ में आ रही है ना। कह रहा है ये तुम मारेगा तो हमारा बेटा आ जाएगा, तो उसने कहा नहीं तो वो तो नहीं आएगा, तो फिर किस लिए मारेगा, इसलिए मारेंगे कि ये दूसरों को बिना कारण ही काटेगा, ये खल जाति का है, दुष्ट है स्वभाव, दुष्ट लोग बिना कारण ही दूसरों को तंग करते हैं, उनका इसीलिए तो दुष्ट कहते हैं, बिना कारण ही उनके दुख में सुख रहेंगे यदि वो दुख होगा। यहाँ तक कि यदि वो कहीं जा रहा है तो उसकी यात्रा को भंग करना है, भंग करना माने यात्रा खराब करना है, अपनी नाक काट करके भी और उसकी यात्रा को खराब करेंगे। आ रहा है समझ में जो कर रहा है? दूसरों का भला नहीं चाहते इसलिए इसको मार देना चाहिए। इसने काटा क्यों? अब तैयार हो गया, माता के निषेध करने पर भी वो उसको निकाल करके काटेगा और काट करके जला देगा। सांप ने कहा, ये भैया हमें क्यों मार रहा, तो तुमने काटा क्यों? तो हमने तो काटा नहीं, काल ने कहा मैंने काटा। मैं दूसरों को क्यों नहीं काटा जी, इसको काटा। बहलिए ने कहा, ये तू दूसरों के कहने से किसी को मार डालेगा? ऐसा होने से कहने वाला और करने वाला दोनों ही दंड के भाग्य होते हैं। यदि किसी ने कह दिया इनको मारो, तो आपने कुछ विचार नहीं किया, आप मारेंगे, इसलिए वो भी दंडनीय है, ये भी दंडनीय है। बल्कि जो प्रेरणा देता है उसको आगे दंड देना चाहिए, इसलिए तुमको हम जरूर दंड देंगे। उसने कहा कि भाई हमारा इसमें दोष नहीं, काल ने कहा हम नहीं सुनते हैं, तुम्हें मारेंगे। इतने में काल वहां पर पहुंच गए, जमराज बोले, सर तू इस प्रकार से झूठ क्यों बोलता है, हमने तुमको तो नहीं कहा था। अरे इसका कर्म ही ने काल बन करके और तुमको कहा था, पूर्व जन्म में ऐसा ही इसने काम किया था, इसलिए वो कर्म ही अब काल बन करके आया और काल ने सबको प्रेरणा देकर के उसे कटाई, अर्थात काल नहीं काटा। इसलिए यदि कोई आदमी कर्म करता है तो वो कर्म बन जाता है काल, समय, और वही समय आने पर वही कर्म जब फलता है तो बुरे को बुरा फल और अच्छे को अच्छा फल। इसमें भगवान का भी कोई दोष नहीं है, और यदि कोई आपको मार रहा है, अपमान कर रहा है, तो उसका भी दोष नहीं, किसका दोष है, तुमने पूर्व जन्म में किया, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। हमने जरूर उसका बुरा किया होगा इसलिए वो बुरा कर रहा है, इस तरह से अपने मन को शांत करके क्रोधित नहीं होना चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज, आप लोगों ने इनको नहीं मारा, दुर्योधन इत्यादि को, जो दोनों को किसने मारा, काल ने, इनके कर्म जो बुरे कर्म थे वही इनको मारा। इसलिए प्रत्येक अवस्था में शांत प्रशांत रह करके अपना भगवत भजन करना चाहिए। कोई अपमान करने पर भी शांत रहना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी ने जो महाप्रभु के परिकर थे, क्या ले आया है दो, रूप गोस्वामी का प्रसंग बाहर करो, उन्होंने उपदेश दिया, पहले अपने मन को दमन करो, मनो बेगम बाचो बेगम मनसः क्रोध बेगम जिह्वा उदरो पस्त बेगम एतान वेगान जबी सहित सर्वाम अपमान प्रति शिष्य। यदि भजन करना चाहते हो तो क्या करो, पहले अपने मन को दमन करो, अपनी वाणी को दमन करो, जो मन में आए और जो जीवा पर आ जाए बस उसी को कह दिया, ऐसा मत करो, विचार करो। इसलिए इसको अपने दमन करके कंट्रोल में करो, जीवा में रीढ़ नहीं है, रीढ़ समझते हैं, बोन नहीं है, इसलिए सीधी नहीं, वो बड़ी टेढ़ी है, इधर लपकती है उधर लपकती है, कभी दांतों में जाती है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, सब जगह लपकती है। कंट्रोल, जो इस जीवा को कंट्रोल नहीं करेगा वो भजन नहीं कर सकता, पहली बात। घर में भी यदि बहू की जीवा ठीक नहीं है, कंट्रोल में नहीं, तो घर में झगड़ा होगा, यदि बहू ऐसी है तो वैसा ही होगा, या घर में और कोई है उनको भी ऐसी दशा, और भजन करने आया और जिह्वा पर अंकुश नहीं रहा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। हमारी द्रौपदी जी बड़ी भली थी महिला, किंतु उन्होंने केवल यही कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। किसके लिए कहा? बात तो सत्य थी, इसमें कोई झूठ नहीं था। तो भी समय के अनुसार में इसने गड़बड़ कर दिया, इसलिए महाभारत युद्ध हुआ और सभी लोग सम। सीता जी बड़ी भली थी, राम की पत्नी और स्वयं लक्ष्मी जी थी, किंतु लीला के लिए उन्होंने क्या किया? लक्ष्मण जी पर ऐसे ताने मारे और बेकार बिना कारण ही उनको गाली गलौज की, जबकि राम सोने के मृग पर जब दौड़े पीछे से, जबकि वो रावण के कहने से सोने का मृग बन करके गया मारी। और उस समय में मरते समय उसने पुकारा, हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, उन्हीं के राम के ही गले के स्वर में। सीता जी बोली ऐसे, अरे भैया तुम्हारे भाई के ऊपर में दुख पड़ा है, संकट पड़ा है, जल्दी से जाकर के उनकी रक्षा करो। उन्होंने कहा जी मैं जानता हूँ हमारे भाई के ऊपर में कभी भी कोई दुख कष्ट नहीं आ सकता, विश्व में ऐसा कोई नहीं है जो उनसे लड़ सके या उनसे बलवान हो, उन पर कभी कष्ट नहीं, आप निश्चिंत रहें, ये असुरों की माया है। बोलिए ओ तो भरत का गुप्तचूर है, गुप्तचर है, और तुम राम को मरवा करके हमसे शादी करना चाहता है, हमको रखना चाहता है। मैंने कहा आज तक मैंने आपका चेहरा मैंने नहीं देखा, आपको मैया मैं समझता हूँ, आप मेरे लिए इतनी कठोर बातें कर रही, अब मैं नहीं सहन करूँगा, अब मैं जा रहा हूँ, किंतु इस लाइन से मत आगे जाना, ये कह के धनुष लगा रहे। किंतु दोनों आदेशों को उन्होंने नहीं माना, तो इसलिए क्या हुआ, चोरी गई और रामायण का युद्ध हुआ। इसलिए जीवा पर अंकुश रखो, यदि भजन करना चाहते हो जो मन में आए वही कह दो, ऐसा नहीं। उसी तरह से मन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, ये सब चीजों को कंट्रोल रखो। विशेष करके और भी बहुत सी शिक्षाएं हैं, उसमें एक विशेष बात बतलाता हूँ आप लोगों के लिए। कृष्णैक जस्य वाचि मनसा ध्रियेत, दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशम्, शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्य मन्न, निन्दादि शून्य हृदय में सति संगलब्ध। उपदेशामृत, उपदेशों में अमृत है, इन उपदेशों को जो पाएगा वो कृष्ण भक्ति रूपी अमृत को पाएगा। स्वामी जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन, इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिवोशन उन्होंने लिखा, किंतु मैं समझता कि इसको उनका कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ता, कोई भी न किसी को पढ़ने के लिए उपदेश देंगे ये पढ़ो। चैतन्य चरितामृत है ये नहीं कहेंगे ये पढ़ो, डिस्ट्रीब्यूट करो। उस डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होगा यदि पढ़ो नहीं? अरे बैठ करके पढ़ाओ, उन बच्चों को जो आते हैं उनको पढ़ाओ, चैतन्य चरितामृत, उपदेशामृत, इन सब ग्रंथों को पढ़ाओ, तब तो भजन करेंगे, अन्यथा भजन कर नहीं कर सकते। इसलिए उसका एक श्लोक मैं आपको बतला रहा हूं, कृष्ण की जस्य वाचि मनसा ध्रियेत, जिसके जिह्वा पर, आप लोग सुनिए इधर, जिसके जिह्वा पर एक भी कृष्ण का नाम सुनो उसको मन से आदर करो। बतलाते हैं कोई? कहेंगे नहीं, यदि कोई साधु संत है उसके पास मत जाना, बस हमारे पास में रहो, ऐसा नहीं। जो कृष्ण का नाम करा वो हमारा सजाती हो गया, हमारा बंधु हो गया, भले ही उसको दीक्षा नहीं मिली है कोई बात नहीं है, कृष्ण नाम तो कर रहा है, उसको अपना सजाती समझ करके उसका मन ही मन में आदर करो। वाह भाई कृष्ण नाम आज सुना करके हमको कृतार्थ आपने कर दिया, आप हमारे अपने हैं, परिवार के हैं, उसको और उत्साह देना चाहिए, मन के द्वारा आदर करो। यदि विपरीत कहते हैं तो ये भक्ति का विरोधी है। ये हमने अपना जीवन भक्ति के लिए उत्सर्ग किया है, किसी व्यक्ति के लिए विशेष के लिए नहीं, किसी एक जाति के लिए नहीं, संप्रदाय के लिए नहीं, यदि वो गलत पथ पर है। ऐसा यदि गुरु भी हो तत्क्षणात बदलो, नहीं तो भक्ति नहीं होगी। बलि गुरु तजउ कंत बन परिस्थान, ऐसे लाखों उदाहरण है। इसलिए मन के द्वारा भी उसका आदर करो, और दीक्षास्ती चेत, यदि उसकी दीक्षा हो गई तो क्या करो, प्रणत भीष्य प्रणाम करो साष्टांग। यदि उसकी दीक्षा, ये मत देखो जैसे ये हमारा जूनियर है कि सीनियर है, ये मत देखो, इसकी दीक्षा हो गई है ना, इसलिए इसको प्रणाम करो। ये बतला रहा हूँ भविष्य में जो भी हरिनाम लेंगे, दीक्षा लेंगे, उनके लिए भी, जो ले चुके हैं उनके लिए भी। ये सब वैष्णव व्यवहार है, एडिकेट है, इसका जो पालन नहीं करता वो वैष्णव ही नहीं हो सकता, तो क्या भक्ति करेगा। इसलिए इन चीजों को धारण करना चाहिए। तो यदि उसकी दीक्षा हो गई चेत, यदि उसकी दीक्षा हो गई है, दीक्षा माने क्या, दिव्य ज्ञान हो गया, उसके सारे दोष निकल गए, तब वो दीक्षा कहलाती है। दीक्षा ये नहीं ये आग जला करके हमन कर दिया स्वाहा स्वाहा, और एक वो धागे का तीन धाग का यहाँ उपनयन करा दिया, जाओ तुम्हारी, और भिक्षा ले आ करके हमको दे दो, जितना भी भिक्षा आ जाए, ये दीक्षा नहीं है। दीक्षा माने क्या, दिव्य ज्ञान उसको दे दे, वो समझे दिव्य ज्ञान माने क्या, मैं जीवात्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, प्रत्येक जीव ही भगवान का दास है, ये बाघ भालू भी भगवान के दास हैं। वैष्णव लोग उनको भी दूर से प्रणाम कर लेते हैं, तो और की तो बात क्या, दीक्षा की तो बात ही क्या है। तो दीक्षा हो गई, दिव्य ज्ञान हो गई, और इसको ये हो गया कि मैं कृष्ण का दास हूँ, जीवन जीव मात्र ही भगवान का दास है, सारे दोष उसके दूर हो गए हों, अनर्थ दूर हो गए हों, अपराध दूर हो गए हों, तब इसका नाम है दीक्षा। यदि ऐसा व्यक्ति हो तो क्या करो, वो तुमसे जूनियर भी हो तभी उनको प्रणाम करो, और वो क्या करेगा, वो भी साष्टांग प्रणाम करेगा, और मन मन भी आदर भी करो दोनों का। वैष्णव का सर्वोत्तम जो लक्षण है, किसी की निंदा नहीं करते, किसी की भी निंदा नहीं करते। निंदा करने से क्या होता है, उसके जितने निंदा कर रहे हो दुर्गुण है वो हमारे अंदर में आ जाएंगे, इसलिए वो बहुत डरता है निंदा कर। बदमाश व्यक्ति भी तो उसकी निंदा मत करो, अपना काम करो, उससे दूर रहो, निंदा मत करो। तो यदि दीक्षा होने के बाद में ऐसा देखो कि कोई वैष्णव है, दीक्षा भी हो गई है, और वो किसी की निंदा नहीं करते हैं, दिन रात भगवान के नाम के लेने में लगे रहते हैं, उनको देखने से ही कृष्ण नाम की स्फूर्ति होती है, ऐसे परम भागवत वैष्णव को देख करके अपना हृदय उनके चरणों में समर्पित कर दो, इनके संग से ही भक्ति होगी। कितने सुंदर सुंदर उपदेश हैं, इसलिए इन उपदेशों को मान करके चलना है। कोई भी वैष्णव आए, शत्रु मत समझो, विपक्षी नहीं, सजातीय का है, अपने परिवार का है, ऐसा मान करके उसका आदर करो। आज मैं चैतन्य चरितामृत से आप लोगों को रूप गोस्वामी की शिक्षा जो चैतन्य महापुरुष जी ने दी थी उसके संबंध में थोड़ा सा बतला रहा। आप लोग वैष्णव में भेद मत समझेंगे, ये हमारे गुरु हैं और ये वैष्णव हमारे गुरु के साथ में नहीं है, ऐसा कभी मत समझेंगे। वैष्णव मात्र को, प्राणी मात्र को ही आदर सम्मान दें। साधारण मनुष्य जो हरिनाम नहीं करता उसको भी यथा योग्य सम्मान दो, किंतु भगवत विरोधी हो तो उसे थोड़ा सा दूर से ही नमस्कार करो। चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी की शिक्षा के संबंध में कुछ बतलाया गया। एक समय बंगाल में एक मुसलमान राजा था, उसका नाम था हुसैन शाह। तो वो बहुत ऊंचा मीनार बना रहा था। मीनार जानते हैं, मीनार को क्या, टुम्ब, टुम्ब ना, बहुत ऊंचा बना रहा था, जैसे दिल्ली से उस पर चढ़ करके सारी दिल्ली को मैं देखूंगा। तो उसका जहां राजधानी था, राजमहल या जहां पर था मालदह, वहीं पर बहुत ऊंचा बना रहा था, सारे मालदह को अब मैं वहीं से देखूंगा, इसलिए वो बनवा रहा था। बहुत से सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शिल्पी थे, मजदूर थे, वो बना रहे थे, जिसमें हेड जो था वो बहुत ही गजब का था, बहुत। तो वो एक दिन मीनार के ऊपर में बैठा हुआ बादशाह अपने मिस्त्री से बात कर रहा था, हेड मिस्त्री से। बहुत सुंदर हुआ है, लाजवाब हुआ है, बहुत सुंदर खूबसूरत हुआ है। तो मिस्त्री ने कहा, हजूर हम तो इसे भी अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, तो इसे भी अच्छा बना सकता है? तो उन्होंने कहा, जिसका हाथ पैर काट लो और काट करके ऊपर से लेकर के गिरा दो, नहीं तो अभी जो हमारे लिए बनाया तो दूसरों के यहाँ जाएगा, तो इसे भी अच्छा बना लेगा। ये दूसरों का स्वभाव, बस। साथ ही साथ में आदेश दिया, हाथ पैर दोनों काट लिए गए, यदि नीचे गिराने में भी बच जाए, और हाथ पैर इसलिए काट लिए जब फिर कहीं बच भी जाएगा तो बना नहीं सकेगा, किंतु इतना ऊंचा 300-400 फीट ऊंचाई से जब फेंक दिया गया तो वो साथ ही साथ मर गया, और उसमें बड़ा क्रोधित हो रहा था। अभी मीनार तो पूरा हो गया था, थोड़ा सा कुछ बच रहा था। थोड़ी देर के बाद में एक अपने अधिकारी से कहा, देख अभी जल्दी से बुला लाओ, अगर नहीं बुला लाएगा तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। ये डर के मारे पूछ नहीं सका कि किसको बुला लाऊं। आदेश आदेश, वो जल्दी से घबरा करके वहां से नीचे उतर गया। अब वो राज्य छोड़ करके भागा, जैसे कहीं यदि बादशाह ने देखा मैं किसको बुला लाऊं, कहा तो कुछ है नहीं, इसलिए हम उसको छोड़ करके चला गया। वहां से किसी एक शहर में पहुंचा, वहां पर वो जा रहा था, इधर उधर बहुत दिनों से घूम रहा है और बड़ा दुखी था। एक दिन दो बालक थे, उनकी उम्र 16-17 वर्ष की होगी, दोनों भाई थे, और वो अपने घर पर थे। उन्होंने देखा जिसे रोज आदमी है पर बड़ा दुखी होकर के घूम रहा है, तो उनको बुलाया, भाई तुम इतने चिंतित क्यों हो, क्या बात है, क्या खोल करके बोलो। उन्होंने कहा, भाई मैं तो मालदह से आया हूँ, हुसैन साहब का बादशाह का मैं बहुत बड़ा कर्मचारी हूँ, उसने कहा जिसे बुला लाओ, जल्दी लेकर के आओ नहीं तो गर्दन काट लेंगे। मैं किसको बुलाऊँ, क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। तो उन लोगों ने कहा, दोनों भाइयों ने, देख उस समय वो राजा क्या कर रहा था, तो मीनार पर चढ़ा हुआ। बात क्या हुई, बात हुई कि उसके मिस्त्री को उन्होंने ऊपर से फेंकवा दिया, मर गया, और बड़ा क्रोधित था जो कि बना रहा था उसको। तो उसी समय हमको कहा जब बुला लाओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने कुछ चिंता करके कहा, अच्छा वो जो मीनार पर खड़ा था जिसको वो मिस्त्री बनवा रहा था जो मारा गया, तो मिस्त्री वहाँ का कुछ काम बाकी है? तो हाँ अभी तक कुछ बाकी है। ठीक है, यहाँ से तुम इन दो मिशन्स को, मिशन्स माने मजदूर जो बनाते हैं, यहाँ से ले जाओ। और ले करके वहाँ पर पहुँचा। अब तो 4-5 दिन के बाद में बसा के पास में पहुँचा, तो कहा जी हजूर मैं बुला करके लाया। किसको बुला करके लाया? तो ये दो मिस्त्री जो मिशन्स हैं इनको लाया। तो वो हंसने लगा, हंस पड़ा, बोले तुम कैसे समझा, तुमको तो मैंने बोला नहीं, पूछे मुझे याद आई कि इसको तो कुछ कहा नहीं, तो तू कैसे बुला लाए? हजूर यही तो बात थी, मैं तो डर के मारे नहीं आ रहा था, कहीं आपके राज्य से चला जाऊंगा, दो वहां पर लड़के हैं उन लोगों ने हमको बतलाया। अच्छा उन लड़कों को ले आओ। ये लड़के कौन हैं? यही रूप, छोटा वाला रूप और बड़ा वाला सनातन गोस्वामी, नाम सुना है उनका ना, बहुत इंटेलिजेंट थे, और आने के बाद में इनको अपना प्रधानमंत्री और दूसरे को अपना खास प्राइवेट सेक्रेटरी बना रूप गोस्वामी को, वो और बहुत बुद्धिमान थे रूप गोस्वामी। और उस समय में उर्दू, फारसी, बंगला, संस्कृत, उस समय की भाषा थी विशेष करके, और उर्दू फारसी मुसलमानों की, इसमें बड़ी भारी उन्नत विद्वान और संस्कृत और बंगला के भी बड़े विद्वान, उनको अपना प्रधानमंत्री और प्राइवेट सेक्रेटरी रख लिया। पीछे से चैतन्य महाप्रभु से भेंट हो गई, इन्होंने ये मंत्री तो सब कुछ छोड़ करके महाप्रभु के चरणों में पहुंच गए। जिस समय ये रूप जी गए, उन्होंने सारा कुछ अपना जो घर का जो कमाई था लाखों करोड़ रुपए सब कुछ छोड़ दिया, आधा तो ब्राह्मणों को दे दिया। आजकल जैसे ब्राह्मण नहीं पहले थे, आजकल के ब्राह्मण कैसे क्रिया कुछ जानते नहीं है, कोई तत्व नहीं, बड़े लोभी इत्यादि। कुछ कुछ ब्राह्मण आप लोगों को मिल सकते हैं। तो उस समय में अपने राज्य के सब जो कुछ पाया था दे दिया, और आधे में से कुछ अपने परिवार के लिए थोड़ा सा दे दिया, और कुछ रख दिया सनातन गोस्वामी को, कैसे भी बाई हुक एंड क्रूक उनको जैसे भी दे करके वो लौट चले आए भजन करने के लिए, और अपने आप चले गए। इनके छोटे भाई थे अनुपम जीव गोस्वामी के पिता, वो भी इनके साथ में चले गए। उस समय छोटे छोटे ये लोग थे, वहाँ पर पहुँचे प्रयाग में, और महाप्रभु जी दर्शन करके आ रहे थे वृंदावन का, बड़े भाव में विघोर होकर के हिरणों को पकड़ लेते। कृष्ण कृष्ण, कभी कृष्ण को देखा? यमुना जी के नीले पानी को देख करके और उसमें कूद जाके, हाँ यही कालिंदी है, इसमें कृष्ण कल्लोल कर रहे होंगे, उसमें डूबने का संदेश रहता। हिरणों को देख करके न जाने क्या उनको हो जाता, इस तरह से भाव भी होकर के वहां पर आ रहे थे। उसी समय में भेंट हुई रूप गोस्वामी से। कहां पर हुई? प्रयाग में। प्रयाग नाम सुना है आप लोगों ने? इलाहाबाद, मैंने जहां पर गंगा और यमुना मिलती हैं वहां पर, बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। वहां पर कौन मेला लगता है ना, कुंभ का मेला लगता है वहां। वहीं पर रूप गोस्वामी उन्होंने कुछ शिक्षाएं दी, शिक्षाएं दी, उसका सार ये है। 45 मिनट हो गया है तो तुम बोलो, तो उठो बोलो, बोलो जल्दी है, अब दांत मात मार करो, उठो उठो जल्दी, खड़े होकर के बोलो। बोलिए बोलिए क्या हुआ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जब प्रयाग में शरद गोस्वामी के साथ महाप्रभु का मिलन हुआ, तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश दिया था। महाप्रभु के उपदेशों के आधार पर शरद गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु उज्जवल ने ये सब ग्रंथों का प्रकाश किया। पहले चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मनुष्य कैसे, कितने प्रकार के मनुष्य हैं। उसने भी दिखाया कि पुलिंदी सभी जाति के हैं, जो लोग भजन नहीं करते, कुछ जानते ही नहीं, जिसको चैतन्य जैव धर्म ग्रंथों में श्रीभक्तिनो ठाकुर संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन, पूर्ण विकसित चेतन, इस रूप में जो चेतनता का विभाग दिखाया। फिर भजन करने वालों में से भी कुछ लोग, जो लोग ऐसे असुर प्रकृति के नहीं है, उनमें से कुछ लोग भगवान को मुख से मानते हैं, जो भजन नहीं करते हैं। कुछ से है निरीश्वर, जिनको एथेइस्ट कहा गया, जो भगवान को मानते ही नहीं। और कुछ लोग हैं कि इनको कहा गया नास्तिक, और कुछ लोग हैं उनको कहा गया निरीश्वर नास्तिक, भगवान को नहीं नहीं मानते हैं और भजन भी नहीं करते हैं। उसके और थोड़ा आगे चल करके बौद्ध, वो लोग भी भगवान को नहीं मानते, और उससे थोड़ा आगे चलने पर वो लोग प्रोत्साहन बौद्धवादी, जिनको शंकराचार्य इस जगह से विकत करके भारतवर्ष के बौद्धों को खदेड़ने के लिए ये नीति अपनाया था। ये शंकर से जो और कोई नहीं है, शंकर शंकरो साक्षात वैश्व नारायण स्वयं। शंकराचार्य कौन थे? साक्षात महादेव थे। जगत के लोग भजन करते हैं कैसे? प्रभु ये मुझे दीजिए, ये दीजिए, भाजांग मनोरमा देही मनोवृत्ति सारिणी रूपम देही जयम देही जसो देही विश्व देही तो देही 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 भगवान स्वयं आ गए। शिव जी को बुलाकर कहा आपको ऐसे कुछ काम करना पड़ेगा कि मुझे गोपन करो, लोग ऐसे न मुझे ऐसे तंग न करें। तो भगवान के आदेश पर शिव जी मायावाद को प्रचार किया जिसको मनुजिन कहा गया है। इनसे भी श्रेष्ठ कौन? जो लोग भगवान को भजन करते हैं। इन भगवान को भजन करने वालों में से कोई वही दीदी मार्ग से भजन करते हैं भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव रख करके कि ये सृष्टि स्थिति प्रलय के करता है। ऐसे भगवान के प्रति जिनका महिमा ज्ञान है ऐश्वर्य ज्ञान है इनको विधि मार्ग का भक्ति का विधि मार्ग का भक्त कहा गया। इस विधि मार्ग श्री चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी प्रचार करने के लिए आदेश दिया था। इनसे था ऊपर चलने पर कौन है जो लोग भगवान को शिष्य से पढ़ाई करता न जान करके लौकिक सद्बंधु के रूप में जान करके भगवान की सेवा करते हैं। ये लोग कैसे भगवान की सेवा करते हैं? शांत दास सख बात्सल्य और मधुर इन पांच प्रकार से सेवा करते हैं। जगत के साधारण रूप में बहुत लोगों की धारणा है कि हम भगवान से मिल करके एक हो जाएंगे, यह धारणा बिल्कुल गलत है। जगत में